जमानों की उमंग, बाब नंबर 15, शादी की ज़ियाफ़त। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खदमत का आगाज यरूशलेम में कोई बड़ा हैरत अंगेज काम दिखाकर ना की, बल्कि गलील के छोटे से गांव में शादी के मौके पर शादी की खुशियों को दुबाला करने के लिए उसने मौजज़ा दिखाया। यूं उसने जाहिर किया कि उसकी नादारों की मदद करने में है। बयाबान में से आजमाइश के नागवार प्याले को चखना पड़ा ताकि वो बनी नौ इंसान को अपनी बरकात से लबरेज प्याला पेश कर सके। यर्दन से यस्सु गलील को चला गया। वहां कानामी गलील में एक शादी की ज़ियाफ़त हो रही थी। ये गांव नासरत से ज्यादा दूर न था। दुल्हा और दुल्हन के अजीजो अकारिब मुकद्दसा मरियम और यूसुफ के रिश्तेदारों में से थे। बस यस्सु और उसके शागिर्द इस शादी में शामिल हुए। कुछ अरसा घर से दूर रहने के बाद इस शादी में यस्सु अपनी मां से मिला। मुकद्दसा मरियम ने उस जहूर के बारे, जो दरियाए यर्दन के किनारे यस्सु के बपतिस्मा पाने के वक्त हुआ, उसके बारे सुन रखा था, जिससे उसके ईमान को तकवीयत मिली, और जो बातें फरिश्ता के जरिए उसे बताई गई थीं उसे पूरी होती नजर आईं। मुकद्दसा मरियम तमाम इसराइल से ज्यादा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मिशन से परेशान थी। उसकी पैदाइश के मौके पर जो पेशनगोई की गई थी वो उससे भी बखूबी वाकिफ थी। यूहन्ना ने जो अपना ताल्लुक यस्सु के साथ बताया उससे भी वो बहुत खुशी हुई, यानी मैं उसकी राह तैयार करने वाला हूं, आप उसकी उम्मीदों में नई जान आ गई। मगर उसे ये भी खबर मिली कि यस्सु बयाबान में चला गया है, जिससे उस दिल बैठ गया। जिस रोज से नासरत में फरिश्ते का पैगाम सुना था उसी रोज से उसने मसीह के बारे उन तमाम शवाहिद को अपने दिल में कीमती खजाने के तौर जमा कर लिया था जो उसे मसीह मौऊद साबित करते थे। यस्सु की पाकीजगी और बेलौस जिंदगी से उसे पूरा पूरा यकीन हो चुका था कि उसे खुदा ही ने भेजा है। इसके बावजूद शकूक और मायूसियों ने उसे घेर रखा था, इसलिए वो बड़ी शिद्दत से उसके जलाल के जहूर के लिए मुंतजर थी। मुकद्दसा मरियम के खावंद यूसुफ का इंतकाल हो चुका था, जो यस्सु मसीह की पैदाइश के भेद से वाकिफ था। अब कोई और इतना करीबी नहीं था जिसे वो राजदार बनाकर अपनी उम्मीद और खौफ व हरास का इजहार कर सकती। गुज़श्ता दो माह बड़ी मायूसियों और उदासियों के थे। वो यस्सु मसीह से भी जुदा हो गई थी, जो उसके लिए हमदर्दी और तसल्ली व तशफ़ी का बायस था। इस दौरान उसने बुजुर्ग शमो के इस कलाम पर काफी गौर व खौज किया, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छुट जाएगी ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। लूका 35:2। उसे उन तीन दिनों की अज़ियत याद आई जब यस्सु ईद फसह के मौके पर उनसे बछड़ गया था, क्योंकि उस मौके पर बुजुर्ग यूसुफ और मुकद्दसा मरियम को गुमान हुआ कि शायद यस्सु अब उनसे हमेशा हमेशा के लिए बछड़ गया है। मुकद्दसा मरियम इस शादी के मौके पर अपने वफादार, फर्ज शनास और हसास बेटे से मिली, मगर अब वो पहले वाला बेटा न था। उसका चेहरा बदल चुका था। बियाबान में जो सख्तियां झीली थीं उनके आसार चेहरे से नुमाया थे। उसके अलावा तहम्मुल, रवादारी और खुद एतमादी जैसे वस्फ उसके आसमानी मिशन की अक्कासी कर रहे थे। उसके हमराह नौजवानों की टोली थी जो बड़ी अकीदत से उसकी पैरवी कर रही थी। उन नौजवानों की मोहब्बत और अकीदत का ये आलम था कि वो उसे आका कहकर पुकारते थे और मुकद्दसा मरियम को तमाम वाकयात तफसीलन बता रहे थे, और ये भी कि उन्होंने बपतिस्मा के वक्त क्या देखा और क्या सुना। आखिर में उन्होंने ऐलानिया कहा, जिसका जिक्र मूसा ने और नबियों ने किया वो हमको मिल गया है। यूहन्ना 45:1। आसमानों की आमद पर हर तरफ गहमा गहमी थी। मुख्तलिफ तरीकों से खुशी का इजहार हो रहा था। मौका महल के मुताबिक उनकी गुफ्तगू के मौजू बड़े दिलचस्प थे, जिनमें हर कोई मगन दिखाई देता था। छोटी छोटी टोलियों में लोग खुशगपियों में मसरूफ थे। उनमें से बाज हैरत से इब्ने मरियम की तरफ गाहे गाहे देख लेते और जीरो लब उसके बारे कुछ इजहार ख्याल करते, जबकि शागिर्दों की जबानी मुकद्दसा मरियम ने येसु के बारे गवाही सुनी तो उसकी खुशियां बयां से बाहर हो गईं। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी उम्मीद बेसूद ना थी। जब मुकद्दसा मरियम ने देखा कि उस मजमा में कोई ऐसा नहीं जिसकी आंखें इब्ने मरियम पर ना लगी हूं, तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश येसु यहां साबित कर दिखाए कि वो खुदा का सतूदा है। यकीनन वो किसी बड़े मोजज़ात की उम्मीद करती थी। उन दिनों में दस्तूर के मुताबिक शादी का अरसा कई दिनों पर मुहित होता था। इससे पहले कि शादी के दिन पूरे होते, मैं तमाम हो गई, जिसकी वजह से दुल्हा के घरवालों को बड़ी शर्मसारी का सामना था, क्योंकि दस्तूर के मुताबिक मैं के बगैर ज़ियाफ़त अधूरी ख्याल की जाती थी, और अगर मैं ख़त्म हो जाती तो मेहमान नवाजी पर हर्फ आता था। मुकद्दसा मरियम ने उस नाजुक सूरत हाल से मसीह यसु को आगाह किया कि उनके पास मैं नहीं रही। हकीकत में मुकद्दसा मरियम अलमसीह को मशवरा दे रही थी कि तू उनकी ज़रूरत पूरी कर, मगर मसीह ने जवाब में कहा, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। ऐसे मालूम होता है कि अलमसीह के दिल में अपनी मां के लिए कोई इज्जत नहीं थी, मगर ऐसी कोई बात नहीं। उस जमाना के मुताबिक ए औरत उस खातून के लिए इस्तेमाल होता था जिसकी ताबेदारी करना मकसूद होता था, क्योंकि खुदावन मसीह का हर अमल उस शरीयत के मुताबिक था जो उसने 10 अहकाम की सूरत में हमें दे रखी है। लिखा है, तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। खुरूज 12:20।
अब देखें कि सलीब पर भी मसीह अपनी मां को न भूला, और जब उसने अपनी मुकद्दस मां को अपने एक अजीज शागिर्द के सुपुर्द किया, तो फिर भी इन्हीं अल्फाज में अपनी मां को मुखातिब हुआ। इस तरह के लबो लहजा से उस जमाना के मुताबिक इज्जत तकरीम और अकीदत की अक्कासी होती थी। बचपन में जब मसीह येसु यरूशलेम की हैकल में गया, तो खुदावन ने उस पर उसके मिशन का मुकाशफा खोला। बस मसीह ने मुकद्दसा मरियम से कहा, क्या तुमको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के यहां होना जरूर है? लूका 49:2।
उन अल्फाज में उसकी तमाम जिंदगी की खिदमत का लुब लुबाब पाया जाता है, खुसूसन इसमें निजात का काम सर फहरिस्त था जिसके लिए वो इस दुनिया में मुजस्सम होकर आया था। हकीकत में खुदावंद मुकद्दसा मरियम को इशारा दे रहा था कि खुदा का मुझ पर आपकी निस्बत ज्यादा हक और इख्तियार है। 30 साल तक उसने कमाल वफादारी से अपनी मां की खिदमत की, मगर अब वक्त आ गया था कि वो अपने बाप के काम की तकमील करे जिसके लिए वो भेजा गया था। दुनिया का निजात दहिंदा और खुदा का बेटा होने की हैसियत से किसी जमीनी रिश्ता को उसके मिशन में बायस रुकावट नहीं होना था। इसी तरह किसी बही दुनिया की लुभाने वाली चीज को हमारे उस रास्ते में रुकावट का बायस न बनना चाहिए जिस पर उसने हमें चलने की हिदायत फरमाई है। गुनाह में गिरी हुई नस्ल इंसानी की वाहिद उम्मीद मसीह यस्सु में ही है। मुकद्दसा मरियम भी सिर्फ खुदा के बर्रे के जरिए ही निजात पा सकती थी। बजाते खुद उसमें निजात पाने का कोई वस्फ मौजूद न था। वो भी आम इंसानों की मानिंद थी। मसीह के साथ उसका रिश्ता किसी लिहाज से भी दूसरे इंसानों पर रूहानी फजीलत नहीं बख्शा। ये कलाम कि मेरा अभी वक्त नहीं आया से जाहिर है कि उसका हर लम्हा उस तजवीज़ की कड़ी थी जो बनामी आलम से पेशतर मौजूद थी। नीज उस तजवीज़ के तमाम जज़ियात मुकम्मल थे, और जब वो इंसानों में चलता फिरता था तो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक अपस की हर कदम पर रहनुमाई होती थी। इसीलिए वो हर लम्हा मुकर्ररा वक्त की इंतजार में रहता। मसीह यस्सु का मुकद्दमा मरियम को ये जवाब देना कि मेरा अभी वक्त नहीं आया, मुकद्दसा मरियम के उस सवाल का जवाब था जो अभी तक अपस के जहन में था, कि कोई मोजज़ा दिखाता कि ये लोग जान जाए कि तुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद खुदावन ने भेजा है। उसे पूरी उम्मीद थी कि मसीह यस्सु यहां मऊदा मसीह होने का ऐलान करके बनी इसराइल के तख्त पर बराजमान हो जाएगा, मगर अभी उसके बादशाह बनने का वक्त नहीं आया था। बरक्स उसके ये उसका वक्त बतौर मर्द गमनाक और रंज के आशना के था, क्योंकि आले आदम को बचाने के लिए उसने खुद बरजा और रगबत मुजस्सम होना कबूल किया था। इसके बावजूद मसीह खुदावन ने मुकद्दसा मरियम और शागिर्दों के ईमान को तकबियत देने के लिए कनामी गलील में पहला मोजज़ा दिखाया। शागिर्दों को तो अभी बहुत सी आजमाइशों का मुकाबला करना था। उन्हें अब कोई शक नहीं था कि पेशन गोइयों के मुताबिक यही आने वाला मसीह है।
اب تو ان کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ مذہبی رہنما بھی اس پر ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کے ان حیرت انگیز کاموں کا چرچا کیا جو اس سے سرزد ہوئے، مگر انہیں یہ دیکھ کر بڑا صدمہ ہوا کہ شرع کے معلم اور فقی ان کی گواہی سن کر مسیح کو قبول کرنے کے بجائے اس سے بوز رکھنے لگے۔ مگر ابتدائی معجزات کی بدولت شاگردوں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ اس کے بعد انہوں نے ہر طرح کی مخالفت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جون ہی مقدسہ مریم نے یسوع کا جواب سنا، اس نے خادموں کو کہا کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔
وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے اور ان میں 2-2، 3-3 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے کہا، ان میں پانی بھر دو۔ خادموں نے اس کے کہنے کے مطابق ان میں پانی بھر دیا، چونکہ میں فوراً درکار تھی۔ چنانچہ مسیح نے انہیں فرمایا کہ اب نکال کر میری مجلس کے پاس لے جاؤ۔ جب انہوں نے نکالا تو پانی کی بجائے ان مٹکوں سے میں نکلی۔ یوں کسی کو یہ اندازہ نہ ہوا کہ میں ختم ہو چکی تھی، اور جب میری مجلس نے اسے چکھا تو کہنے لگے کہ جو ہم نے پہلے بھی تھی اس کی نسبت یہ میں کہیں بہتر ہے۔ اس پر وہ دلہا کو بلا کر کہنے لگا کہ ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ شادی کی ضیافت میں جو بخشش یسوع مسیح نے عطا فرمائی وہ بطور ایک علامت کے تھی۔ پانی اس کی موت میں شامل ہونے یعنی بپتسمہ کی علامت ہے، اور میں اس کے خون کی علامت ہے جو دنیا کے گناہوں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ بے شک مٹکوں میں پانی انسانوں نے بھر، مگر صرف مسیح کے کلام سے وہ سادہ پانی میں تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح ہیکل میں ادا کی جانے والی تمام رسوم جو یسوع کی موت کی طرف اشارہ کرتی تھیں اور اب بھی کرتی ہیں، صرف ایمان کے ذریعے ہی مسیح یسوع کی قدرت سے روح کی نشو نما کرتی ہیں۔ یسوع مسیح کے کلام سے ضیافت کی میں نئے کمی واقع نہ ہوئی۔ اسی طرح اس کا فضل ہماری خطائیں معاف کرنے میں کافی اور شافی ہے، اور وہی ہماری روح کی بحالی کرتا اور اسے قائم رکھتا ہے۔ پہلی ہی ضیافت کے موقع پر جس میں وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ شامل ہوا، انہیں پیالہ دیا جو ان کی نجات کے لیے اس کے کام کی علامت تھا۔ اسی طرح اس نے عشاء ربانی کے موقع پر انہیں پیالہ دیا جس کے ذریعے اس نے انہیں اپنی موت کے بارے آگاہ کیا، اکرنتھیوں 26:11۔ اور پھر اس نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، متی 29:26۔ وہ میں جو یسوع مسیح نے شادی کی ضیافت میں مہیا کی اور جو اس نے اپنے شاگردوں کو اپنے خون کی علامت کے طور پیش کی، وہ انگوروں کا خالص رس تھا۔ یسعیاہ نبی اس نئی میں کے بارے یوں گویا ہوتا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح شیرہ خوشیاں انگور میں موجود ہے اور کوئی کہے اسے خراب نہ کیوں کہ اس میں برکت ہے، یسعیاہ 8:65۔ یہ خداوند مسیح ہی تھا جس نے بنی اسرائیل کو خبردار کیا کہ میں مسخرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے، اور جو شراب تیار نہ کی، یہ کام تو صرف ابلیس کا ہے۔ وہ انسانوں کو اس طرف راغب کرتا ہے تاکہ وہ شراب پی کر متوالے ہوں، ان کے ذہن راست سوچ سے دور چلے جائیں اور روحانی طور پر وہ بے حس ہو جائیں۔ مگر اس طرح کی شرپسند فطرت کو خداوند کے تابع کرنا ہے، یہی اس کا منشا ہے۔ یسوع کی پوری زندگی خود انکاری کی زندگی تھی۔ اشتہا کی رغبت کو ختم کرنے کے لیے اس نے وہ مصائب جھیلے جو ہمیں جھیلنے تھے۔ یہ خداوند یسوع مسیح ہی تھا جس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے والدین کو ہدایت فرمائی کہ نہ وہ میں پیے اور نہ ہی شراب، بلکہ مسیح نے یہی پابندی منوہا کی بیوی پر بھی لگائی۔ بلکہ اس نے یہاں تک کہا کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنے پڑوسی کو شراب پلا کر متوالا کرنا ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کانامی گلیل میں شادی کی ضیافت میں مسیح نے شراب تیار کی، انہیں علم ہونا چاہیے کہ مندرجہ بالا اقتباسات کی روشنی میں مسیح کیونکہ اپنے کلام کی نفی کر سکتا ہے۔ وہ میں جو اس نے ضیافت کے موقع پر تیار کی، وہ انگوروں کا تازہ رس تھا جو جسمانی بالیدگی کا سبب ہوا۔
जब मैं पीने वालों ने उस मैं की तारीफ की और जिसने मैं बनाई थी उसे देखना चाहा, तो वो वहां से फौरन खामोशी से टल गया। बल्कि उसके शागिर्दों को भी मालूम न हुआ कि वो वहां से कब चला गया। अब उन तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज उसके शागिर्द बन गए, क्योंकि उन्हें पहली बार मालूम हुआ कि ये लोग उसे मौऊदा मसीह तस्लीम करते हैं। शागिर्दों ने करदन के किनारे जो कुछ देखा और सुना था उसकी गवाही दी। इस गवाही से बहुतों के दिलों में उम्मीद की करण जगमगा उठी और उन्हें यकीन हो गया कि खुदा ने नजात दहिंदा को इस दुनिया में भेज दिया है। इस मोजज़े की खबर तमाम इलाके में फैल गई, हत्ता कि ये खबर यरूशलम में भी पहुंची। इस पर फरीसियों और शरा के मौल्लिमों और काहनों ने नई लगन से मौऊदा मसीह के आने की पेशनगोइयों का मुताला शुरू कर दिया। उनमें से ज्यादातर तो ये जानने के ख्वाहां थे कि उस नए उस्ताद का क्या मिशन है। मसीह यस्सु की खिदमत यहूदी क़यादत के बिल्कुल बरक्स थी। उनकी रिवायात ने ख्याल और अमल दोनों की आज़ादी सल्ब कर रखी थी। यहूदी रहनुमा गैर अकवाम से ही नहीं बल्कि पे अपनी कौम के भी बहुत से लोगों से अलग रहते थे। वो किसी तरह भी उनसे दोस्ती करना न चाहते, यूं वो बहुत तंग नज़र वाक़े हुए थे, बल्कि वो तमाम तबकों को नफ़रत की निगाह से देखते थे। चूंकि खुदावन मसीह गिरी हुई नस्ल इंसानी में बहाली लाने के लिए आया था, बस उसने उनके साथ गमगुसारी की। उसने शरीयत की दिल से कदर की और फरीसियों को उनकी रियाकारी पर झड़का और कोशिश की कि उन तमाम फजूल कवानीन से अवाम को रिहाई लाए जो फरीसियों ने उन पर अपनी तरफ से लागू कर रखे थे। उसने उन रुकावटों को भी तोड़ने के लिए जदोजहद की जो मुआशरे को मुख्तलिफ तबकों में तकसीम का बायस बनी हुई थीं, ताकि वो तमाम आले आदम को एक ही खानदान में जम कर ले। शादी की जियाफत में इस गर्ज की तकमील के लिए उसका यह पहला कदम था। खुदावन ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को फरमाया कि वो बयाबान में चला जाए ताकि वो रब्बियों और काहनों के असर से महफूज रहे और जिस काम के लिए उसे बुलाया है उसकी तैयारी करे। मगर उसकी उस तन्हाई का इतलाक अवाम पर न होता था, हत्ता कि यूहन्ना ने खुद भी किसी को ये ना कहा कि जो जो फराइज तुम अदा कर रहे हो उन्हें तर्क करके यहां मेरे पास आओ और मेरी मुनादी सुनो, मगर उन्हें ये जरूर कहा कि तौबा के मुआफिक फल लो। मसीह यस्सु हर तरह की खुद सताई
और मगरूरी की हौसला शिकनी करता था। ताहम वो मलनसार था, जो कोई उसे दावत देता वो उनके यहां बिला इम्तियाज चला जाता। वो अमीरों और गरीबों दोनों के घरों में जाता, आलमों और जाहिलों से मिलता और उनकी तवज्जो रूहानी और अबदी चीजों की तरफ लगाकर उन्हें आला मर्तबा बख्शा। इन तमाम सोबतों में उसने बेहयाई को पसपा किया और अपनी सीरत को दागदार होने से महफूज रखा। ताहम उसने भूली भाली और मासूम खुशियों से खत उठाया। उसकी रफाकत से हमजूली भी लुत्फंदोज होते। यहूदी शादी एक बड़ा अहम और मुअस्सर मौका था जिससे इब्ने आदम की बिल्कुल दिलाजारी ना हुई, बल्कि शादी में शिरकत करके मसीह यस्सु ने उसे इज्जत बख्शी, जिससे यह साबित हुआ कि यह खुद खुदावन की तरफ से मुकर्रर करदा पाक रस्म है। शादी एक ऐसा मुकद्दस रिश्ता है जो मसीह और कलीसिया की अलामत है, और ये दोनों अहद अतीक और अहद जदीद से वाज़े है। इस शादी की खुशियों से मसीह यस्सु अपने जहन में तसव्वुर कर रहा था कि वो दिन दूर नहीं जब मैं अपनी दुल्हन कलीसा को अपने बाप खुदा के घर लाऊंगा और तमाम निजात याफ्ता बर्रा की ज़ियाफ़त में शिरकत करके कहेंगे, क्योंकि जिस तरह जो इन मर्द कुवारी औरत को ब्याह लाता है और जिस तरह दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है, उसी तरह तेरा खुदा तुझ में मसरूर होगा। खुदावन तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर है, वो ही बचा लेगा। वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा, वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा, वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। यसैया 4:62-5, सगनिया 17:3। जब यूहन्ना आरिफ को आसमानी मकाशफा दिया गया तो उसने लिखा, फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी कि हेलिलविया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादरे मुतलिक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और निहात शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची
और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। मुकाशफा 6:19-7:9। खुदावंद यस्सु मसीह ने हर एक फर्द में खुदा की बादशाही की तड़प देखी और भलाई के जरिए उसने उनके दिलों तक रसाई कर ली। गलियों, बाजारों, कश्तियों, मंदरों और दरिया के किनारों और शादी की ज़ियाफ़तों में उनसे मुलाकातें की। वो वहां भी पहुंचा जहां जहां लोग रोजी कमाने के लिए घर से बाहर गए थे। उसने अपने के घरों में जाकर उनसे मुलाकातें की और अपनी इलाही रफाकत से अपने खानदानों को अपने जेर असर ले आया। लोगों के साथ हमदर्दी और गमगुसारी दिखाने से उसने उनके दिलों को जीत लिया। वो अक्सर पहाड़ों पर तन्हाई में दुआ करने के लिए चला जाता। ये तो वो तैयारी थी जिसके जरिए वो बनी नौ इंसान की खिदमत और भी सरगर्मी से करता, क्योंकि दुआ के मकाम से लौटकर उसने बीमारों को शिफा और चैन बख्शा, अनजान अजनबी लोगों को हिदायत और इब्लीस के असीरों को रिहाई दिलाई अपनी शख्सी मुलाकात और रफाकत के जरिए से।
मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों की तरियत की। उस उन्हें पहाड़ों के दामन में और साहिल समंदर और कभी कभी राह चलते हुए भी सिखाया। उसने उन पर खुदा की बादशाही के भेद को आश्कारा किया। उसने हालिया जमाने की तरह तकरीरें न की। सच्चाई पाने के लिए जहां भी उसने दिलों को वापाया, वहीं उसने नजात की सदाकत आयां कर दी। उसने अपने शागिर्दों को कभी हुक्म न दिया कि ये या वो करो, बल्कि सिर्फ ये कि मेरी पैरवी करो। खा उसने देहातों का सफर किया या शहरों का, उसने उन्हें अपने हमराह दिखा ताकि वो देखें कि अलमसीह ने लोगों को किस तरह तालीम दी। उसने उनमें अपनी दिलचस्पी दिखाई, इसीलिए वो उसके साथ मुत्तहिद होकर उसके काम में हाथ बटाने लगे। वो सब लोग जो उसके कलाम की मनादी करते हैं और जिन्होंने उसके फजल की खुशखबरी पाली है, चाहिए कि वो सब उसके नमूना की पैरवी करें। हमें मुआशरती सोबतों से पहलोतही नहीं करना है, न हमें दूसरों से अलग थलग जिंदगी बसर करनी है। तमाम तबकों तक रसाई करने के लिए जहां वो मुकीम हैं जाना होगा। सिर्फ मिंबर से पैगाम और इलाही सच्चाई दिलों को असर पजीर नहीं कर सकती, और भी खिदमत करने की जगहें हैं। गो वो हकीर सी हैं, मगर वो बहुत ही उम्मीद अफजा हैं। ये खिदमत मामूल घरों, बड़े बड़े आलीशान महलों और दूसरे इज्तिमात में की जा सकती है। मसीह के शागिर्द होते हुए हमें महज दुनियावी खत उठाने के लिए लोगों से मिलना जुलना जरूरी नहीं। ऐसी बेहोदा खुशियों से दूर रहना होगा जो सिर्फ नुकसान का बायस हैं। अपने काम और कलाम की वजह से हरगिज गुनाह को दावत न दें। जहां कहीं भी जाएं, यीशु को साथ लेकर जाएं और दूसरों पर उसे जाहिर करें कि वो आपको कितना अजीज है। लेकिन वो लोग जो अपने मजहब को छुपा रखते हैं, वो अपने गिर्द पत्थरों का हिसार खड़ा कर लेते हैं, जिससे नेकी और भलाई करने के मौके मफकूद हो जाते हैं। लोगों के साथ मेल जोल रखने से ही मसीहियत दुनिया में आ सकती है। जिन्हें मसीह का मुकाशफा और उसका नूर हासिल हो चुका है, उन पर लाजिम है कि वो उन लोगों की राहें मुनव्वर करें जो अभी तक आफताब सदाकत से बेबहरा हैं। हम सबको यसू के गवाह बनना है। मसीह यसू के फजल से पाकशुदा समाजी कुव्वत यसू के लिए रूहें जीतने के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। दुनिया को मालूम हो जाए कि हम सिर्फ अपने आप में ही दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि हमारी दिली तमन्ना है कि दूसरे भी हमारी बरकात में शामिल हों। दुनिया को देखते दें कि हम लाताल्लुक, जालिम और हमदर्दी से खाली मजहब से मुंसलिक लोग नहीं। वो तमाम लोग जो मसीह पर ईमान रखते हैं, लोगों की उसी तरह खिदमत करें जिस तरह उसने की। हमें दुनिया को कभी भी यह तासुर न देना चाहिए कि मसीह हैं। अगर हम मसीह पर नजरें जमाए रखेंगे तो हम जरूर मेहरबान नजात दहिंदा को देखेंगे, जिसके चेहरे से नूर मुनकिस होकर हम तक पहुंचेगा। जिस जगह उसकी रूह की हुक्मरानी होती है, वहां अमन ठिकाना होता है, वहीं खुशी और सुकून होता है। खुदावंद मसीह अपने पैरोकारों से उस वक्त निहायत खुश होता है जब वो इंसान होने के बावजूद ये साबित करते हैं कि वो भी ज़ाते इलाही का हिस्सा हैं। वो सिर्फ मुजस्समे नहीं, बल्कि जीते जागते मर्दोजुन हैं। उनके दिल इलाही फजल की शबनम से ताजगी पाते हैं जब वो अपने दिलों को रास्तबाजी के आफताब के लिए बेपर्दा कर देते हैं।
वो नूर जो उन पर चमकता है, उनके कामों के जरिए मुनक्किस होकर दूसरों को ताबान और रोशन करता है।